मेरे दिल अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 29 नवंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन चार नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च 2018 में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं निशु पांडे जेवन उत्तर प्रदेश से, आशीष कुमार पटना बिहार से, अजय कुमार महाराया डी बिहार से और ज्योति राजौरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो निशु, आशीष, अजय और ज्योति, आप चारों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुख्य विषय के रूप में हम लोग नेट न्यूट्रलिटी पर बात करेंगे। मुझे याद है कि कल मैंने आपसे कहा था कि हम लोग हो सकता है कि इस विषय पर बात करें कि केंद्र सरकार ने सरपंचों की योग्यता के लिए जो राज्य सरकारों को पत्र लिखने का सोचा है उस विषय पर हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन मित्रों, फिलहाल नेट न्यूट्रलिटी का जो विषय है मुझे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है, तो मैं आज इस विषय को ही आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ, वह विषय मेरे दिमाग में है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर मैं निश्चित रूप से आपसे उपयुक्त समय में बात करूंगा। आप ये न सोचे कि मैं उस विषय को भूल चुका हूं। लेकिन आइए पहले हम थोड़ी सी दूसरे न्यूज देख लेते हैं। सच पूछे तो जो सबसे बड़ी खबर है मुझे जो लगती है सिविल सर्विस की दृष्टि से मित्रों, वह कि हैदराबाद में जो 8वां वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन शुरू हो चुका है। न्यूज में भी आपने सुना और टीवी चैनल्स पर भी आपने देखा है कि कल उसका उद्घाटन हुआ है। हैदराबाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं उनकी जो बेटी हैं इवांका ट्रंप, जो सलाहकार भी हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार भी हैं, इन दोनों ने मिलकर उसका उद्घाटन किया है। मित्रों, ये 3 दिन चलने वाला सम्मेलन है, यानी कि 30 तारीख को इसका आखिरी दिन है। तब देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। यहां मैं एक दो बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तैयारी करने का ढंग होना चाहिए उससे जुड़ी हुई बातें हैं। जैसे देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में एक बात कही, मैं न्यूज से यह बात ले रहा हूं कि भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है, राइट? भारत का राजकोषीय घाटा नियंत्रण में है। अब आप देखिए कि यह बात वो कहां कह रहे हैं, यह बात वो वहां कह रहे हैं जहां विश्व के उद्यमी आए हुए, एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं और यंग एंटरप्रेन्योर्स आए हुए हैं और उसमें ज्यादातर लोग स्टार्टअप्स के हैं, यानी कि जिन्होंने नई नई शुरुआत ही की है। टीवी चैनल्स पर आपने देखा होगा, खासकर मैं जब टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूं तो यहां डीडी न्यूज की बात कर रहा हूं, तो उसमें कुछ लोगों के इंटरव्यूज भी लिए गए थे, राइट? अब यहां जो सोचने की बात है, कैसे हमारा दिमाग एनालिटिकल पावर डेवलप करता है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं दोस्तों कि अब हमारे सोचने की बात है कि यहां उद्यमी आए हुए हैं, विश्व के उद्यमी आए हुए हैं और वहां प्रधानमंत्री ये क्यों कह रहे हैं, अपने खाते बही का हिसाब क्यों बता रहे हैं कि हमारा जो राजकोषीय घाटा है वो नियंत्रण में है। फिर आपने देखा है प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि आप यहां आइए और पूंजी लगाइए, मतलब मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं मेक इन इंडिया, राइट, स्टार्टअप, इन सब की वो बात कर रहे हैं। तो क्या इनका कोई संबंध राजकोषीय घाटा से है? फिर वो ये भी कहते कि आप आइए, आपका स्वागत है सर, आपको हम सारी मदद देंगे, क्या इसका कोई संबंध राजकोषीय घाटा से है? फिर प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा, मैं न्यूज को ही बेस बना रहा हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि हमारे यहां जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें बहुत संभावनाएं हैं और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या इसका कोई संबंध है? उद्यमिता से कोई संबंध है? विश्व सम्मेलन से कोई संबंध है? मित्रों, इनके संबंधों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, वहां प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो मर्जी में आया वो उन्होंने बोल दिया, नॉट एट ऑल। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन में आए हुए उद्यमियों को वो संबोधित कर रहे हैं और ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री कर रहे हैं, वो एक राष्ट्र के रूप में संबोधित कर रहे हैं, उनके कहने का अर्थ है। अब ये बात अलग है कि हम उसे कितना समझ पाते हैं, कितना पकड़ पाते हैं, ये हमारे सोचने और समझने की बात है। तो दोस्तों, चूंकि यह मेरा आज का मुख्य विषय नहीं है कि मैं राजकोषीय घाटा को यहां डिफाइन करूं और इससे जोड़कर बताऊं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से सोचें। यहां वैल्यू एडिशन के रूप में मैं आपको एक दो तथ्य जरूर बताना चाहूंगा मित्रों। भारत का जो मेडिवल पीरियड रहा है, जो हमारा मध्यकाल, और मध्यकाल में आप पहुंच जाइए औरंगजेब के समय तक, औरंगजेब के समय को आप ले लीजिए मध्यकाल, इस 1707 तक औरंगजेब रहे हैं और फिर ब्रिटिशर्स आ ही गए थे, आप देखते हैं फिर मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। कि जो हमारा मध्यकाल है, आप अगर औरंगजेब के काल के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सुनकर यह बड़ा आश्चर्य होगा या सुखद आश्चर्य होगा कि जो वर्ल्ड का जीडीपी था, जीडीपी विश्व का जो उत्पाद था, कुल उत्पाद था, उसमें जो भारत का जो योगदान था, दैट वाज नियर अबाउट 23%, 23%, चीन से भी ज्यादा जीडीपी हमारा था, सोच के देखिए। और जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट के पास जो संपत्ति, मतलब जो वार्षिक आय थी, चलिए संपत्ति की हम बात नहीं करते, जो एनुअल इनकम थी, वह उसी समय जो फ्रांस के लुई हुआ करते थे शासक, उनसे 10 गुना ज्यादा थी, वो भारत था। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको एक बात और पढ़ने को मिलेगी, और वो ये कि जब हम उस समय की आर्थिक स्थिति को देखते हैं तो ये राजकोषीय स्थिति है, ये देश की स्थिति है, लेकिन जो सामान्य जन था, चाहे उसमें किसानों को ले लें, चाहे आप दस्तकारों को ले लें, उनकी हालत बहुत खराब थी। उस समय के हमारे जो ट्रेवलर्स हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि ज्यादातर किसानों के पास मुश्किल से एक जोड़ी बैल हुआ करते थे, औसतन 2-2.5 एकड़ जमीन होती थी और बस उसी में किसी प्रकार से वो गुजारा अपना करते थे। यानी कि जो नीचे का तबका था, उनकी आर्थिक स्थिति कोई बेहतर नहीं थी, जबकि उत्पादन हमारा जो जीडीपी था, दैट वाज नियर अबाउट 23%। ये तथ्य मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इसका इस्तेमाल, जो पूरी की पूरी अब हम लिबरलाइजेशन के दौर में विश्व की बढ़ती हुई संपत्ति को देख रहे हैं, उसके विवेचना में कर सकें। कि ठीक है, एक राष्ट्र की संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन जब तक वह राष्ट्र की संपत्ति वहां की जन जन की संपत्तियों में वृद्धि नहीं करती है, तब तक उसका क्या अर्थ है, इस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है और इस पर विचार किया भी जाना चाहिए। तो मित्रों, मैंने ये आपको इतिहास का एक तथ्य बताया है, मैं समझता हूं कि यह आपके काम विश्लेषण की दृष्टि से आ सकता है। फ्रेंड्स, अब जो दूसरी खबर थी वो थी हमारे वित्त मंत्री जी के जो ब्लॉग में लिखा, और वो ये था कि अखबारों में ये पढ़ने को मिलता है, आपने भी पढ़ा होगा कि सरकार बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनके तो कर्ज को माफ कर दिया है, उसने माफ कर देती है, लेकिन जो बेचारे किसान हैं इनके कर्ज को माफ नहीं किया जाता है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर सरकार का स्टेटमेंट आया है, वित्त मंत्री अगर कह रहे हैं तो आप कह लीजिए सरकार का स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, बिल्कुल गलत है। सरकार ने किसी के भी कर्ज की इस तरह से माफी नहीं की है, बल्कि जो 12 जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंकों के फंसे हुए हैं, उनको वसूलने की कार्यवाही हो रही है, तो यह बहुत ही गलत कथन है, इसको जांचा परखा जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही कि इस प्रश्न ये किया जाना चाहिए कि इन्हें जो कर्ज दिया गया है, ये कर्ज दिया कैसे गया, मतलब उनका कहना था कि ये असंगत तरीके से दिया गया कर्ज है, यानी कि वो डिजर्व करते ही नहीं थे। देखिए, आप और हम जब बैंक से कर्ज लेने जाते हैं, चाहे बाइक के लिए ही क्यों न लेने जाए कि भैया 50,000 रुपए मिल जाए, तो आप देखिए कि बैंक कितनी चीजें वेरीफाई करता है और इंश्योर हो जाना चाहता है कि भैया हम इसको इतना कर्ज दे तो रहे हैं, लेकिन ये लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। और निजी जीवन में भी यही होता है कि आप किसी को कर्ज देंगे तो आप इंश्योर होना चाहेंगे कि मुझे मेरा पैसा वापस मुझे मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो इनको कैसे दे दिया गया, फिर उन्होंने कहा कि अगर दे दिया गया तो फिर अगर वो ब्याज नहीं भर दे पा रहे हैं तो फिर उन पर क्या कार्रवाइयां की गई, क्योंकि ये जो पैसा है ये 2008 से अब तक का फंसा हुआ पैसा है, जो 2008 से देना शुरू किया गया था। तो मित्रों, ये भी एक विश्लेषण के सत्य को जानना है, मतलब हम अपनी तरफ से ही सीधे सीधे बातें न करके, विश्लेषित न करके, बेहतर है कि हम तथ्यों को उठाकर उनका विश्लेषण करें और उन तथ्यों की दृष्टि से वित्त मंत्री के बारे में जो खबरें आई हैं उनके स्टेटमेंट पर उनको जानना मैं समझता हूं कि बहुत उपयोगी होगा। और खासकर कल के डीडी न्यूज में तो बकायदे पॉइंट वाइज ये बताया भी गया था कि वित्त मंत्री ने क्या क्या बातें कही है। मित्रों, अब एक मैं छोटी सी सूचना के रूप में खबर आपको और बता दूं, और वह यह है कि जो amazon.com है, आपने देखा है amazon.com ने एक शुरू किया है, एक वेबसाइट कह लीजिए सहेली नाम से, एक प्लेटफॉर्म बनाया है बेसिकली सहेली नाम से। और इस सहेली प्लेटफॉर्म पर वो जो महिलाएं जो उद्यमी हैं, जो अपनी तरफ से जो चीजों का उत्पादन कर रही हैं, उनको बेचने का एक बाजार उपलब्ध कराएगा। अमेजन जानते हैं आज की आप दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी है, और आज तो शायद ये दुनिया के सबसे नंबर एक के धनी व्यक्ति भी हो गए हैं। कभी कभी अखबारों में आ जाता है बिल गेट्स, और इनमें एक तरह का कंपटीशन भी चलता रहता है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है सहेली, और यहां मैं आपको थोड़ा सा ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो आठवां हमारा वैश्विक उद्यमिता सम्मेलन हो रहा है, इसकी जो एक बहुत बड़ी जो थीम है, जो मेन थीम है, वो महिला उद्यमिता के ऊपर भी है कि महिलाओं को कैसे उद्यमी बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाए, उनके सामने क्या समस्याएं आती हैं, किस तरह की और सहायता की जरूरत है, इन पर विचार विमर्श होगा। तो उसी बीच में उस सम्मेलन के पहले ही दिन अमेजन ने यह घोषणा की है। दोस्तों, अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर, वह है नेट न्यूट्रलिटी, जिसे हम कहते हैं नेट निरपेक्षता। देखिए, हमारे यहां जो टेलीकॉम की जो रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, जिसे हम ट्राई कहते हैं मित्रों, कुल मिलाकर के यह है कि उसने अभी अपनी सिफारिशें गवर्नमेंट को दी हैं। उसने क्या सिफारिश की है? सिफारिश का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है वो ये है कि जो नेट है, इंटरनेट है, नेट का मतलब है इंटरनेट। देखिए, आज हम खासकर आप तो सब तो नई पीढ़ी के लोग हैं, मतलब इंटरनेट के बिना तो लगता होगा जैसे कि जीवन है ही नहीं, कैसे कल्पना कर सकते हैं, ये दुनिया चलेगी कैसे? अगर इंटरनेट न रहे तो ऐसा लगता है कि दुनिया ही नहीं चलेगी, एक नर्व सिस्टम बन गया है दुनिया का इंटरनेट। तो उन्होंने जो बात कही है कि इंटरनेट की पहुंच से कोई भी सर्विस प्रोवाइडर भेदभाव नहीं कर सकता, कि जो इंटरनेट में जो चीजें लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं उसे बहुत ही एक ओपन प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाना चाहिए, इस पर किसी की मलकियत नहीं मानी जा सकती। जब वो कह रहे हैं कि नेट न्यूट्रलिटी होगी, निरपेक्षता होगी, यानी कि वह किसी के अधिकार में नहीं होगी, तो फिर उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कि वह यह है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट की सर्विस दे रहा है, आप सब इसके बारे में मैं जानता हूं कि मुझसे कई गुना ज्यादा जानते हैं, है ना, मैं उतना ज्यादा नहीं जानता हूं, आप तो उसको हैंडल ही कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वह न तो किसी भी ऐप को, वेबसाइट को या सर्विस को ब्लॉक कर सकता है, वह किसी भी ऐप, वेबसाइट और सर्विस को ब्लॉक नहीं कर सकता, और सेकेंड पॉइंट, और न ही वह दूसरों से अपनी स्पीड तेज कर सकता है, स्पीड भी उसे वही रखनी होगी, है ना। हालांकि उसके कुछ अपवाद उन्होंने दिए हैं, अखबारों में आया है, वो आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो बहुत ही बेसिक चीजों की बात आपसे कर रहा हूं। जहां खास तरह की जरूरतों के लिए ज्यादा स्पीड की जब जरूरत होगी वहां ठीक है, उनको दिया जाएगा, अदरवाइज वो स्पीड में भेदभाव नहीं कर सकता। मतलब कुल मिलाकर के ये है मित्रों कि सर्विस प्रोवाइडर किसी से भी सर्विस देने के मामले में कोई भेदभाव नहीं करेगा, बस कुल मिलाकर के इसका यही कहना है। इसके बाद आज आप अखबारों में पढ़ लीजिएगा। अब सवाल यह है कि मैंने इस विषय को लिया क्यों है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसकी सीधी सी बात है, सीधी सी बात यह है तो कि हमें देखना होगा सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऐसा क्यों कहा गया, और यदि ऐसा कहा गया है तो भारत के संदर्भ में यह कितना पॉजिटिव है और कितना निगेटिव है, यानी कि भारत के लिए यह कितना उपयोगी होगा, कितना व्यावहारिक है कह लीजिए और कितना अव्यावहारिक है। देखिए, ट्राई ने यह भी कहा है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे कारण यह है कि अगर सबकी पहुंच में नेट नहीं होगा, भेदभाव वाली पॉलिसी अपनाई जाएगी, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा। देखिए, इनोवेशन, अब जो इनोवेशन कर रहा है, जो नए नए प्रयोग लोग कर रहे हैं, आप देखिए कि नए नए प्रयोग करने के बाद हम आज इंटरनेट की दुनिया में कहां पहुंच गए हैं। आप ओला कैब सुनते हैं, उबर कैब सुनते हैं, आप देखिए कि वहां क्या चमत्कार हो गया है कि आपको पता लग रहा है कि कहां कैब अवेलेबल है, कितने मिनट में आपके पास पहुंच जाएगी, आप बुक कर दीजिए तो आपके पास वो कैब आ जाएगी, इसके बाद आप बैठ करके चले जाइए, तो ये कैब कहां है अभी वो बकायदे लोकेट कर सकते हैं। इससे कितनी बड़ी सिक्योरिटी हो गई, सुरक्षा कितनी ज्यादा हो गई। तो ये जो सारे के सारे चमत्कार हैं इनोवेशंस की देन है। लेकिन अगर आप इंटरनेट में भेदभाव करने लगेंगे तो ये इनोवेशन पर मार पड़ेगी, क्योंकि इनोवेट करने वाले लोग जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से सक्षम हो। स्टार्टअप बेचारे नए नए नौजवान कहीं से पूंजी जुटा करके स्टार्टअप शुरू करते हैं, अगर उनको भेदभाव वाली नेट मिलेगी या बहुत महंगी नेट मिलेगी तो उनके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जिसको गवर्नमेंट इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है और जो जरूरी भी है, भेदभाव वाले में फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर भी संकट आ जाएगा। और फिर सरकारी एप्स जो गवर्नमेंट के एप्स हैं जिन पर हमारी बहुत फ्री और आसानी से पहुंच है, जो सच पूछे तो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भी अनिवार्य है, अगर वहां भेदभाव होगा तो फिर इन पर भी संकट आएगा। तो ये चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं क्योंकि जिन्हें देखते हुए यह जरूर लगता है कि नेट न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है। और फिर भारत जो आर्थिक रूप से इतना गरीब तो नहीं कहना चाहिए लेकिन उतना सक्षम राष्ट्र नहीं है, जहां अभी भी आधे से अधिक आबादी आर्थिक रूप से कह लीजिए कि संकट में ही है। अगर आर्थिक रूप से संकट में है कह रहा हूं इसका मतलब भुखमरी से नहीं है, लेकिन जो उतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकती वो अपना जीवन यापन कर रही है, वहां नेट न्यूट्रलिटी उनके आर्थिक विकास के लिए भी और सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो मित्रों इस तरह से भारतीय संदर्भ में आप इसे देखने जानने और समझने की कोशिश करें, और अभी डेफिनेटली इस पर आर्टिकल्स आएंगे, मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करूंगा, तो आप इसे भी एक अपने नोट्स बनाने का टॉपिक समझ सकते हैं। तो मित्रों आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, आज मैं आपको ढेर सारे न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं। आप यूं कह लीजिए कि मैं सोमवार का बदला ले रहा हूं आप सबसे, लेकिन यहां मैं कहना चाहूंगा कि आप सब अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें से टॉपिक अपने लिए छांट लीजिएगा। दोस्तों ईमेल लिखने वाले अपने सभी मित्रों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप ही में से कुछ के नाम हैं, पलक मल्होत्रा, राहुल कुमार औरंगाबाद बिहार से, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राहुल कुमार पुणे महाराष्ट्र से, राम शरीफ देवरिया उत्तर प्रदेश से, अतुल सिंह चौहान सीतापुर उत्तर प्रदेश से, संजय गौतम हिमाचल प्रदेश से, विनय मौर्य बलिया उत्तर प्रदेश से, अमित कुमार इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, दीक्षा पांडे, नेहा अहिर, रवि गहलोत, शुभम कुमार, राहुल सिंह राठौड़ नागपुर महाराष्ट्र से, धर्मेंद्र और अंबुज सिंह आजमगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।